कृष्ण भाव। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति किसी मुसीबत में फंस गया था। हाथ पैर मार रहा था, लेकिन डर ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे उसके। केवल डर ही उसे अपने चारों ओर मंडराता दिखाई देता था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। राजा के एक बड़े मंत्री के हाथ में उसके भाग्य की चाबी थी। सब यही कहते थे कि मंत्री बहुत कड़क है, उससे बचकर रहने की सलाह देते थे। इसी दुविधा में फंसा था वह उद्योगपति कि कैसे उस मंत्री तक पहुंच पाए। कौन उसे मंत्री के मन की बात बता सकता है? कोई जानकार नहीं मिल रहा था उसे। तभी एक दिन अचानक ऑफिस के कॉरिडोर में एक मैनेजर गलती से उसके सामने आ गया। हाथ जोड़ दिए मैनेजर ने। किसी को भी आज्ञा नहीं थी कि जब मालिक जा रहा हो तो कोई सामने आ सके, लेकिन उद्योगपति ने बुरा नहीं मनाया। वह तो मन से अच्छा व्यक्ति था, दयालु, सबका दुख समझने वाला। अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या गलती की है आपने? आश्चर्यचकित हुए पूछा उसने। मैं आपके रास्ते में आ गया था, इसकी आज्ञा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसी आज्ञा किसने दी है? अरे भाई, मैं भी तो आप जैसा इंसान हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों की मेहनत और लगन के कारण ही हूं। मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं यदि मेरे साथ आप ना हो तो। मैनेजर गदगद हो गया। ऐसा मालिक कहां मिलेगा? शायद कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मालिक की बात सुनकर जैसे हिम्मत हो आई उसकी, बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हां हां, कहो। आप आजकल बहुत चिंतित हैं, हमारा प्रोजेक्ट रुकने को है। यदि सरकार की ओर से कोई परेशानी आ गई तो ना जाने क्या होगा। मालिक ने नजर उठाकर ध्यान से देखा अपने मैनेजर को, जैसे पूछना चाह रहा हो कि उसे उसके मन का हाल कैसे मालूम है। मैनेजर तो रुका नहीं, बोलने लगा, मैं मंत्री के एक साथी की बाबत कुछ जानता हूं, उससे मिल लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। घोर आश्चर्य हुआ उसे, लेकिन अपने बाबूजी की दी सीख उसके मन में बसी हुई थी। वे हमेशा कहते थे, सबकी हमेशा सुनो, ना जाने कहां से कोई रास्ता निकल आए। कौन है वह? पूछा उसने। वह और मंत्री एक ही घर में रहते हैं, इतना ही जानता हूं। वह मित्र है मंत्री का या रिश्तेदार नहीं जानता, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि वह सभी से प्रेम से मिलता है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? पूछा उद्योगपति ने। मैं दिल्ली गया था पिछले बरस अपनी बुआ की बरसी पर, वह उनके पड़ोस में रहती थी, तभी देखा था उन दोनों को। क्या तुम उसे जानते हो? जी नहीं, मैं तो बस उसका पता बता सकता हूं। बस फिर क्या था, उद्योगपति के मन में जैसे आशा की कोई किरण जग गई थी। एकाएक यह मात्र संयोग था, या कि कृष्ण भाव की पहली कड़ी। दो, उधर अमित पूजा से निवृत्त होकर नीचे आया तो नौकर ने आकर उसे एक कार्ड थमा दिया। कार्ड देखकर अमित को आश्चर्य हुआ, बोला, यह किसने दिया? कोई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बताया नौकर ने उसे। मुझसे? अरे गलती लगी होगी, मंत्री जी को मिलने आए होंगे, बोला अमित। नहीं नहीं, आप ही से मिलने आए हैं, नौकर ने उसे बताया। अच्छा, उन्हें भीतर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा दो, मैं अभी आता हूं। मन ही मन उसे गर्व महसूस हुआ। इतनी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उससे मिलने क्यों आया है? बात कुछ कुछ समझ आ रही थी उसे, लेकिन बोला कुछ नहीं। जैसा सोचा था वही हुआ। बात को घुमा फिरा कर बोला शंकरन, यानी वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नई किताब छपी है, उसके प्रचार में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अभी इतना ही कहा था शंकरन ने कि अमित ने उसे टोक दिया। शुक्रिया, मैं ऐसे किसी प्रचार में विश्वास नहीं रखता। आप आए हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। शब्द प्रेम भाव लिए थे। शंकरन ने कहा, विश्वास कीजिए, आपकी तारीफ बहुत सुनी थी, इसीलिए हमारे बॉस ने सोचा। अमित फिर बीच में बोला, देखिए मिस्टर शंकरन, मैं ना तो राजनीतिज्ञ हूं और ना ही कोई बड़ा आदमी, छोटा सा अपना व्यापार है, शौक से लिखता हूं बस, और कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरे मित्र से कोई काम है, तभी आप आए हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मित्र बहुत अच्छा आदमी है, सबका भला चाहता है, कभी किसी के काम में रोड़ा नहीं अटकाता, बस गलत आदमी की कभी मदद नहीं करता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। दरअसल हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, शंकरन ने एकाएक कहा। मुझसे? और आश्चर्य हुआ अमित को, यह कैसे हो सकता है, इतने बड़े आदमी वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अरे भाई, आपको समझने में गलती हुई होगी, वह मेरे पड़ोसी से मिलना चाहते होंगे। नहीं, वह आप ही से मिलना चाहते हैं। शंकरन अपनी बात पर अडिग था। एक बार फिर पूछ लीजिए उनसे, मुझसे मिलकर वह क्या करेंगे, बोला अमित। तभी देखा अमित ने कि शंकरन एकाएक मोबाइल उठाकर कुछ सुनने लगा, जैसे दूसरी ओर कोई लगातार उनकी बात सुन रहा था। पल भर पश्चात ही शंकरन ने कहा, मेरे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। अमित के हृदय की धड़कन तेज हो गई। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति उससे बात करना चाह रहा है, ऐसा सौभाग्य उसका। वाह, मंत्री के पड़ोसी होने का कितना बड़ा फायदा। अमित ने फोन लिया, अभी कान से लगाया ही था कि उधर से चिर परिचित आवाज आई। यह आवाज अभी तक उसने टीवी पर ही सुनी थी, लेकिन आज यह आवाज अमित को संबोधित करते हुए बोल रही थी, अमित जी कैसे हैं? जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बढ़िया, अमित जी आपकी बात सुनी, भाई दिल जीत लिया है आपने। अब तो बस इसीलिए मिलने की तमन्ना है कि आपसे दिल का रिश्ता जोड़ना है, उसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उधर से आवाज आई, राज राजेश्वर नाम था उद्योगपति का। अमित तब कुछ और ना बोल पाया, बस इतना ही बोला, दिल का रिश्ता वह तो आपसे मिलकर ही बन पाएगा, बोलिए कब और कहां मिलना है। बस एक दो दिनों में मैं दिल्ली आता हूं, तभी मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अमित जी कृपया शंकरन को फोन दे दीजिए। अमित ने शंकरन को फोन दे दिया, उसने कान से फोन लगाया, कुछ सुना और फोन बंद करके अमित से बोला, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने मेरी इज्जत रख ली, बॉस कल शाम ही मिलना चाहेंगे आपको। कहां आना होगा? कहीं नहीं, वही आएंगे आपसे मिलने। वाह, ऐसा भाग्य अमित का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति उससे मिलने आएगा। कोई और होता तो खूब तैयारी करता, लेकिन यहां तो अमित था। सोच अलग थी उसकी, सुबह से यही सोच रहा था, क्या वो आएगा, क्या वो सच में आएगा? अरे आएगा भी तो 5 मिनट के लिए, अपनी बात कहेगा और चला जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद किसी ने मजाक ना किया हो। लोगों का क्या भरोसा, लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़ी। शांत मन लिए प्रतीक्षा करने लगा। सुबह फिर फोन आया था शंकरन का। बोला उसने, शाम 7 बजे का समय क्या आपको सूट करता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अब भाग्य देखिए अमित का। अमित की पत्नी, अमित का नौकर, दोनों को तेज बुखार आ गया था। ऑफिस के चपरासी को बोला कि वह घर पर रुक जाए। जलपान का प्रबंध कर लिया था अमित ने। शाम 7 बज गए। कान दरवाजे की घंटी पर लगा था, कोई नहीं आया। 8 बज गए, कोई भी नहीं आया। अमित तो अपनी ही लिखी किताब पढ़ रहा था, मजा आ रहा था उसे। समय देखा तो लगा अब कोई नहीं आएगा। उसने फोन की ओर देखा, फिर न जाने क्या सूझा उसे। उसने शंकरन का नंबर मिला दिया। दूसरी ओर से शंकरन बोला, मैं क्षमा चाहता हूं अमित सर, मैं परेशान सा आपके घर के पास ही खड़ा हूं, लगातार फोन पर हूं, बॉस की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर पाया, इसकी माफी चाहता हूं। बॉस बस आने ही वाले हैं, थोड़ी देर हो गई है, बुरा ना माने प्लीज। कोई बात नहीं, बस फोन कर देते आप, मुझे तो और कोई काम नहीं है, बस प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शंकरन ने कहा। अमित ने फोन रख दिया, किताब में फिर से गुम हो गया, समय का ध्यान ही ना रहा। एकाएक फोन की घंटी बजी, पत्नी का ऊपर से फोन था। क्या हुआ, आए नहीं? लग रहा है मजाक किया है किसी ने। अभी इतना ही कहा था कि घर की घंटी बजी। चपरासी ने भागकर दरवाजा खोला। आगंतुक केवल शंकरन था। हाथ जोड़कर बोला, अमित सर बस 5 मिनट हो, आप समझ सकते हैं, बॉस बहुत व्यस्त रहते हैं, सब कुछ 2 घंटे देरी से चल रहा है, प्लीज। कोई बात नहीं, चाहकर भी अमित उसे कुछ ना कह पाया। शंकरन फिर बाहर निकल गया। 2 ही मिनट बाद ड्राइंग रूम में राज राजेश्वर पधार गए। अमित सब कुछ भूल गया, बस मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था। पहली बार उसे लगा कि सामने खड़ा व्यक्ति कहीं किसी भी भाव में अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा है। अपने सौम्य भाव में हाथ जोड़े खड़ा वह व्यक्ति एक बड़ा स्तंभ है देश की अर्थव्यवस्था का। दोनों गले मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको प्रतीक्षा कराई मैंने, कहा राज राजेश्वर ने। मैं समझ सकता हूं, आपका समय बहुत कीमती है। क्या करते हैं अमित जी आप, पूछा राज राजेश्वर ने। मेरा छोटा सा व्यवसाय है अपना, और खाली समय में मैं कहानी लिखता हूं, अभी नया उपन्यास छपा है मेरा। वाह, एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ कहानी लेखन। व्यापार की बात तो आगे बढ़ी नहीं, कहानी पर चर्चा शुरू हो गई, कहानी से देश पर, और देश से सरकार पर, और सरकार से उद्योगपति की परेशानी पर। अमित राज राजेश्वर की बात सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर इतना भर बोला, मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपका पक्ष सबल है और सिद्धांतों के दायरे में आता है, तो मेरा मित्र कदापि भी आपकी राह में रोड़ा नहीं अटकाएगा। उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं, और ना ही उसे किसी प्रकार का लालच है। राज राजेश्वर कुछ नहीं बोल पाया। अमित के मुख से शब्द निकलने लगे, देखिए आप चिंता ना कीजिए, मैं तो आपके आने का कारण जान गया था, और तभी सब कुछ पता किया आपकी समस्या के बारे में। बात आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार का क्या जाता है, कलम चलती है तो बेगुनाह को फांसी का हुक्म हो जाता है और वही कलम चोर को शाह बना देती है। अगर कोई दूसरा होता तो शायद आपके रास्ते में बहुत रुकावटें आती, लेकिन मेरा मित्र सच मानिए वह दूसरे किस्म का इंसान है। उसके मन में कोई खोट नहीं है, आपके काम में अब कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। शायद आपको 1,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप बेधड़क होकर काम कीजिए, अब कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। राज राजेश्वर अमित के शब्द सुनकर गदगद हो गया। अमित जी, आपके शब्दों ने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। आप शायद नहीं जानते कि मैं आजकल कितना परेशान हूं। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेझिझक कहिए। अमित मुस्कुराने लगा। प्रेम के दो शब्द आपसे सुनने को मिल गए, मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी यही यादगार रहेगी। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। राज राजेश्वर ने हाथ जोड़ दिए। और दिल के रिश्ते की बात याद रखना। अमित ने भी मुस्कुराते हुए राज राजेश्वर से हाथ मिलाया। दोनों फिर एक दूसरे से गले मिले और फिर राज राजेश्वर चिंता मुक्त हुए चला गया। अमित ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, यह तो एक कृष्ण भाव का प्रेम था। बस अपने शब्दों से राज राजेश्वर के मन के डर को दूर कर दिया था। यह डर ही तो है जो रास्ते में रोड़ा बने रातों की नींद हराम कर देता है। यह कृष्ण भाव की दूसरी कड़ी थी।